अवध, अवध यानी लखनऊ की शाम मशहूर है। शाम अवध का जिक्र हर जगह मिलता है। लखनऊ में शाम की मस्ती और हज़रतगंज में टहलना भी अपने आप में एक नशा है। हज़रतगंज मार्केट यानी लखनऊ का दिल, जिससे लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। वैसे अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हज़रतगंज मार्केट का नाम बेगम हज़रत महल के नाम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रतगंज मार्केट का निर्माण अवध के चौथे नवाब अमजद अली शाह ने कराया था। नवाब अमजद अली शाह ने अवध पर 1842 से 1847 तक शासन किया। वे एक सूफी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने वहीं पर एक इमामबाड़े का भी निर्माण कराया। वो सब एरिया इतना सुकून भरा था कि वहीं पर नवाब अमजद अली शाह ने अपने मकबरे का भी निर्माण शुरू करवा दिया। मकबरा यानी मृत होने के बाद दफन होने की जगह, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। उनकी मृत्यु के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने उनकी ये इच्छा पूरी करी और उस इमामबाड़े का निर्माण पूरा किया और वहीं पर नवाब अमजद अली शाह को दफन किया गया। आज ये इमारत सिप्तैनाबाद इमामबाड़ा के नाम से मशहूर है और ये भारत की ASI यानी पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक है। बहुत बातें हैं इस सिप्तैनाबाद इमामबाड़े की। इस इमामबाड़े पर 1857 में अंग्रेज़ फ़ौजों ने हमला किया, इसको बहुत नुकसान पहुंचाया, लूटपाट भी हुई। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा लखनऊ पर हो गया तो फिर अंग्रेज़ों ने इसको चर्च बना दिया। दोबारा 1860 में ये फिर से इमामबाड़ा बन गया। साल 1919 में इसको पुरातत्व विभाग के अधीन किया गया। अंग्रेज़ों ने इसकी बाहरी दीवारें तोड़कर दुकानें भी बना दी। आज़ादी के बाद इसके अंदर शरणार्थियों को भी रहने दिया गया। यही नहीं, इसको नवाब अमजद अली शाह के कथित उत्तराधिकारियों ने बेच भी दिया और 16 बीघे का एरिया आज मात्र एक इमारत तक सिमट गया है। सालों साल ये संरक्षित स्मारक बेहद खस्ता हाल हो गया। लोग इसको हॉन्टेड प्लेस कहने लगे। लॉकडाउन में तो इसका बाहरी गेट भी गिर गया, लेकिन अगर आप आज जाकर देखेंगे तो लखनऊ में ये स्मारक आज एक बार फिर अपने पुराने वैभव से सराबोर, इतिहास समेटे हुए खड़ा है। ये सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक व्यक्ति की 14 साल की मेहनत है और इस मेहनत के लिए वो हर विभाग गए, सर शासन प्रशासन तक गए और यहाँ तक अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया। ये मेहनत की है लखनऊ के लॉयर मोहम्मद हैदर ने। एक वकील होते हुए भी उन्होंने पहले इसका पूरा इतिहास खंगाला, फिर हाईकोर्ट में पेटिशन करी। इस संघर्ष में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन आज सिप्तैनाबाद इमामबाड़ा पुरानी शान और शौकत के साथ रेस्टोर हो चुका है। हैदर ने अपनी इस यात्रा के बारे में SBS से अपने अनुभव साझा किए।
तो पहले अपने बारे में आपको बताएं, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। 1998 में वहाँ से लॉ पास किया और टॉप किया था लॉ में। उसके बाद मैं तमाम जगह में रहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी थी, आई वर्क्ड एज अ लॉ ऑफिसर देयर। और उसके बाद फिर मैं जब लखनऊ आ गया और लखनऊ में अपनी प्रैक्टिस करता था, उसी दौरान एक शरफ जैदी साहब हैं लखनऊ के, काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों में हैं, उनका फ़ोन आया 2008 में मेरे पास, आई थिंक इट वॉज मे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपके लिए कुछ एक जिम्मेदारी मुकर्रर करी है, मुझे उम्मीद है कि आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे और इस जिम्मेदारी पर आप खड़े उतरेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जिम्मेदारी आपने हमको दी है। तो उन्होंने कहा कि आपके घर के थोड़ी सी दूर पर एक मॉन्यूमेंट है जिसको सिप्तैनाबाद इमामबाड़ा कहते हैं, उसकी कमेटी बनाई है, शिया वक्फ बोर्ड है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी उसका एक जॉइंट मुतवल्ली बने आप। अच्छा, ये मुतवल्ली और वक्फ से जनरली लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चोरी डकैती का ही अड्डा है। तो मैंने उनको ऑन द फेस ऑफ इट मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था कि शरफ भाई, मुझे इस चीज़ में आप मत मुलविस करें, आपको जो मदद चाहिए मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैंने डिसीजन ले लिया, अब आपको इसको ऑनर करना पड़ेगा। खैर, हम फिर उसके बाद एक सिप्तैनाबाद इमामबाड़े में एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में हम भी गए। तो हमने देखा कि ये जो जगह है लखनऊ के एकदम हार्ट में है हज़रतगंज। और फिर मैंने जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे कैथीड्रल स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ के बहुत सारे टीचर्स उसी कैंपस में रहते थे। तो मुझे याद आया, मैं बचपन में जब आता था तो देखता था कि खंडहर जैसा दूर पे है, कि पेड़ों से ढका हुआ है और उसके अंदर कोई नहीं जाता और बताते हैं लोग हॉन्टेड है। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि इमामबाड़ा एक बड़े ख़राब सी शेप में है, सारी दीवारें उसकी दरक चुकी थी, बीच बीच में पड़े पेड़, अंदर दरख्त लगे हुए छतों पे, और छत पे बड़ी भारी एक सीपे इसके पीछे। तो मुझे लगा कि ये किस तरह का मॉन्यूमेंट है, मतलब इसकी अपकीप क्यों नहीं हुई। तो उसके बाद इंटरनेट का ज़माना साहब, हमने थोड़ी बहुत इस पर रिसर्च करी, उस टाइम पे इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था जितना आज है। तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये अंगद अली शाह का मकबरा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवंबर 1919 में प्रोटेक्ट किया था। बस इस जगह से मैंने पेग लेके, इस जगह से मैंने स्टार्ट लेके, फिर मैं जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता था तो कई बार मेरे फादर भी मुझे बताते थे कि देखो हर आदमी अपने राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनलाइटन रहता है और अपने राइट्स के लिए कोर्ट चला जाता है, लेकिन आदमी को ये भी समझना चाहिए कि एवरी राइट कम्स विद अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स जानते हैं तो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी थी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। तो ये कहीं ना कहीं हमको झकझोरती थी, कई बार मैं सोचता था कि अब अपनी कोई इस तरह की मैं ड्यूटी करूँगा। तो इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटी टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ माई कंपोजिट कल्चर मैंने सुस्तैनाबाद का ये इशू टेकअप किया और इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इस मॉन्यूमेंट का लिए एक चेंज मेकर जरूर बनूंगा। उसके बाद हमारी जद्दोजहद शुरू हुई, इसकी हिस्ट्री को मैंने डिग आउट किया, तब पता चला कि 1847 में अमजद अली शाह साहब जो अवध के चौथे बादशाह थे उन्होंने अपनी जिंदगी में ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया था। 1842 से लेकर 1847 तक वो यहाँ के बादशाह रहे अवध के, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनकी बाद वफात उनका मकबरा इसी में बने। जब उनका इंतकाल हुआ फरवरी 1847 में तो इमामबाड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन यहीं पे वो दफन हुए और उनके मरने के बाद वाजिद अली शाह साहब ने जो उनके बेटे थे इसको कंप्लीट कराया। इस इमामबाड़े की अराजी जो है वो 16.5 बीघा थी और 1919 में जब ये मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट किया अंग्रेजों ने तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट उसके साथ आया वो है आया कि 1921 में सुल्तान बहादुर नाम के एक आदमी ने अपने आप को इनका वारिस बताकर इमामबाड़ा बेच दिया। इमामबाड़े को खरीदने वाला था लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और जो बेचा नामा था उसमें लिखा हुआ था कि दो चीज़ें इस सेल रीट से अलग रहेंगी, इमामबाड़ा प्रॉपर एंड मॉस्क। तो इमामबाड़ा प्रॉपर का मतलब जहाँ पे हम अदादारी करते हैं वो, और साथ में एक मॉस्क है। इसको छोड़ के बाकी सारी इसकी अराजी बिक गई 1,00,000 रुपये में। ये है इसकी हिस्ट्री। उसके बाद से 2008 से लगातार हमने इसका डेटा इकट्ठा किया, 5 साल हमको लगे, तमाम डिपार्टमेंट से आरटीआई की एप्लीकेशन डाले, इंफॉर्मेशन कमीशन तक गए, सेक्रेटरी अपील करी, पेनाल्टीज लगवाई ऑफिसर्स पे। उसके बाद फिर हमको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री मिली 5 साल बाद। जब हमने इसकी हिस्ट्री को एनालाइज किया तब उसके बाद हमने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करा लखनऊ हाई कोर्ट में। और हमारा उस लिटिगेशन का मकसद न सिर्फ लखनऊ का सुस्तैनाबाद इमामबाड़ा था बल्कि वो 61 इमारतें थीं जो आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट कर रखी थी लखनऊ में। इन 61 इमारतों में से करीब 4-5 ऐसी इमारतें थी जो केवल कागज पर एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए भी हमने कोर्ट दिखाया तो कोर्ट है, कोर्ट की उस टाइम पे जो बेंच थी जस्टिस शिव केसरी सिंह की थी, उन्होंने हमसे सबसे पहला सवाल पूछा कि वकील साहब ये बताइए कि आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं, मतलब इससे आपके क्या मतलब आप समझते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्या कहते हैं प्रोटेक्शन, व्हाट फर्दर प्रोटेक्शन यू वांट मिस्टर रिजवी। तो आई टोल्ड हिम कि ये जो भी मॉन्यूमेंट है ना ये सिर्फ कागज पे प्रोटेक्टेड है। और मैंने सबसे बड़ा उदाहरण सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया सुस्तैनाबाद इमामबाड़े का, और कहा था देखिए ये लखनऊ के हाथ में ये इसकी पोजीशन है आज की डेट में। उसके बाद कोर्ट ने तारीख लगाई और कहा कि ठीक है इसमें जितने भी कंसर्न पार्टी थे, मैं 13 पार्टी बनाई थी, उसमें पुलिस भी पार्टी थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी पार्टी था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी पार्टी था, LDA भी पार्टी था, नगर निगम भी पार्टी था, जितने भी प्रॉपर स्टेक होल्डर्स हो सकते थे इसमें हमने सबको पार्टी बनाया और उनको सबको ला के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया। उसके बाद फिर सुस्तैनाबाद इमामबाड़े का ग्रेजुअली सेक्शन शुरू हुआ। और आपको बताऊँ मेरे लिए बड़े प्राइड की बात है कि इन 14 सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मॉन्यूमेंट की रिपेयर और अपकीप के लिए 3 करोड़ रुपये करीब लगाए। हम ये नहीं कहते हैं कि 3 करोड़ इसमें इन्होंने लगाया, कहते हैं स्पेंड किए, 3 करोड़ उन्होंने इस मॉन्यूमेंट में इन्वेस्ट किए, 2.5 करोड़ रुपये मेन मॉन्यूमेंट में और 50 लाख के करीब जो इसका कुछ दिन पहले से बाहरी गेट गिर गया था उसके रिपेयर और रिनोवेशन में।
सुस्तैनाबाद इमामबाड़े की एक और खास बात है, ये भले ही लोग रूमी गेट, बड़े इमामबाड़ा, भूल भुलैया की तरह इतना मशहूर नहीं है, लेकिन ये भारत का पहला स्मारक है जिसका अपना बाईलॉज है। बाईलॉज यानी पार्लियामेंट द्वारा विशेष कर इस स्मारक के लिए कानून बनाए गए हैं। इस कानून के तहत आप वहाँ पर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, कैसे उपयोग करेंगे इत्यादि शामिल है। सच ही कहा गया है, लखनऊ के स्मारक सांस लेते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का मसाला इस्तेमाल होता है जिसमें तेल उड़द की दाल तक शामिल होती है। यानी इन इमारतों का मसाला आज भी सिकुड़ता और फैलता है।
हाँ, तो अब जब हेरिटेज बायलॉज की बात आई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ कुछ मॉन्यूमेंट सेलेक्ट किए जिनके खुद के अपने हेरिटेज बायलॉज होंगे। हेरिटेज बायलॉज जो है वो डिफाइन करते हैं एक मॉन्यूमेंट का कैरेक्टर, और ये भी डिफाइन करते हैं कि उसके कौन से एरिया, कितने एरिया में किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, किस तरह से उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से उसको आप कंजर्व करेंगे। और ये जो बायलॉज होते हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ राइट फॉर अस कि सैनाबाद का इमामबाड़ा अमजद अली शाह का मकबरा देश का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसके अपने हेरिटेज बायलॉज हैं। जब हेरिटेज बायलॉज इसके बन रहे थे तो पब्लिक से उन्होंने मांगे भी थे सजेशन, हम लोगों ने भी बड़े इसमें एक्सटेंसिव सजेशन दिए थे जिसमें ज्यादातर सजेशन फॉर्म अ पार्ट ऑफ दोज हेरिटेज बायलॉज। तो लखनऊ की बिल्डिंग सांस लेती है। लखनऊ की बिल्डिंग में दो बड़ी खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्डिंग जो है ये बड़ी डीप रूटेड बिल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कहें तो उतनी ज्यादा एडवांस स्टेज पे नहीं थी जितनी अभी है। तो अभी कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे जब रूमी गेट के बारे में हम लड़ाई लड़ रहे थे कि रूमी गेट पे दरार आ गई है, तो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना यह था कि भाई आप वकील हैं, हो सकता है कि आप लॉ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, बट यू आर नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये दरार ऐसी मतलब सब्सटेंशियल दरार नहीं जिससे रूमी गेट को नुकसान हो जाए। तो हमने उनको काउंसिल किया था, हमने कहा था साहब हम बिल्कुल एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानते सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन प्रोफेसर दुर्गेश जी राय हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है IIT कानपुर से, और उनकी एक रिपोर्ट है विद रिस्पेक्ट टू रूमी गेट। उन्होंने कहा है कि अगर इसके नीचे से जो मोटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इमीडिएटली नहीं रोका गया तो इस मॉन्यूमेंट को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे हम आपको विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो भी बिल्डिंग्स थी ये जिस मसाले से बनी थी, चूना, सुर्खी, बेल और उड़द की दाल, ये सारा जो मटेरियल होता है बड़ा विस्कस मटेरियल होता है, एक्सपैंड भी होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, फिर एक्सपैंड होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो एज फार एज सीमेंट इज कंसर्न, सीमेंट तो मॉन्यूमेंट को चोक कर देती है, लेकिन आसिफी इमामबाड़ा को देखिए आप आज तक कहीं पर भी सीपेज नहीं है, कहीं पर भी सीलन नहीं है, लेकिन जहां जहां पे सीमेंट लगी जैसे छोटे मामले में कुछ दिन पहले ASI ने खुद सीमेंट लगा दी थी, उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा सीपेज आ गई।
सच ये है कि कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग सिर्फ एक इमारत नहीं होती है, उसके अंदर इतिहास छुपा होता है। ज़रूरत है इनको संरक्षित करने और बचाने की, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सकें। लखनऊ से फैसल फरीद।